जयदेवला पुस्तक 15 लेक्चर नंबर 1 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम श्रुतात्मने नमः नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियाणं नमो वैचायाणं नमो लोहे सौगसाहूनं मुनिय परमत्थ विथर मुनिवर वीरे सिद्ध विज्जे जासन्तु आभयवदी वसियौ सुयदेवया मच्छं सुसुदेवयाय भक्ति सुदो वजो गो वभावियो सम्मं आवहै नाण सिद्धिं नाणफलं चाविणिं वाणं दोसुवदेवयमिणमो दिक्कुत्तोपणमियून भक्तिये उच्छामि जहासुतम् चारितमोह सखवण विहिम।
यह श्री वीरसेनाचार्य रचित जयदेवला टीका है जो कषाय पाहुर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। आज से भी हम 15वीं नंबर की पुस्तक देखने जा रहे हैं, जो चारित्र मोक्ष अपना नाम का ही अर्थाधिकार, जो 15वां अर्थाधिकार है वो यहाँ पर भी चालू रहता है। यानी शपक श्रेणी की ही बात आगे हम देखेंगे। अभी तक हमने 8वें 9वें गुणस्थान में क्या क्या होता है देखा था। 9वें गुणस्थान में अपगत वेद होने पर अश्वकर्ण करण शुरू होता है, उसी समय अपूर्व स्पर्धक करने का कार्य शुरू होता है। अंतर्मूर्त में ये अश्वकर्ण और ये अपूर्व स्पर्धक करने का कार्य समाप्त हो जाता है। अभी अपूर्व स्पर्धक का अंत समय के बाद अब क्या होगा उसके बाद अभी यहाँ बताने जा रहे हैं। अपूर्व स्पर्धक का अर्थ क्या देखा था, पूर्व स्पर्धकों में जो जघन्य अनुभाग था उसके अनंत वे भाग प्रमाण जो नए स्पर्धक बनते हैं उनको अपूर्व स्पर्धक कहते हैं। पहले समय में अनंत बने, दूसरे समय में अनंत, तीसरे समय में अनंत, फिर भी वो कितने अनंत थे, तो जो पूर्व स्पर्धकों के जो गुणहानि में अनंत स्पर्धक थे उसके असंख्यात वे भाग प्रमाण और पहले समय में बने, उसके असंख्यात वे भाग प्रमाण दूसरे समय में बने। इस तरह से असंख्यात पहले समय में बने उससे असंख्यात, तो इस तरह से पूरा जो अपूर्व स्पर्धक करण का अंतर मूर्त है इतने सारे अपूर्व स्पर्धक बनते हैं। उदय भी हो तो किस तरह से उदय होता है उसकी भी चर्चा आई थी। अब यहाँ हम देखेंगे, सूत्र पढ़ेंगे पहले। एक तो से काले पहुड़ी किट्टी करणधा, से काले ने अनंतर समय में, अभी तक हमने क्या देखा अपूर्व स्पर्धक के अंत समय तक की प्ररूपणा की 14वीं पुस्तक में, अब यहाँ 15वीं पुस्तक में उसके अनंतर समय में। यहाँ जो
अश्वकर्ण करण समाप्त हो गया,
हाँ यानी अश्वकर्ण हो गया अभी, वो तो उसका जो जिसको कहेंगे ना ऑर्डर अनुभाग की वो तो ऐसी रही और आगे नया कार्य शुरू होगा। कौन सा? कृष्टिकरण का। अभी तक क्या किया था, अपूर्व स्पर्धक बने थे। अनुभाग का घटना अभी भी चालू है, अभी तक बने उनको अपूर्व स्पर्धक नाम दिया था, अब जो बनेंगे उसको कृष्टि कहेंगे। अब कृष्टि और स्पर्धक में क्या अंतर है वो देखेंगे अभी। तो एक तो से काले पहुड़ी, पहुड़ी यानी वहां से लेकर, किट्टी करणधा कृष्टिकरण काल कहेंगे अभी इसको, कृष्टि करने का काल, उसके बाद कृष्टि वेदने का यानी कृष्टि का उदय होना, तो वो तो बाद में, पहले तो कृष्टि की जाएगी, बाद में कृष्टियों का उदय होगा। नीचे हिंदी में देखते हैं, यहां से आगे ने अभी अपूर्व स्पर्धक करने का काल समाप्त हुआ, अब इससे आगे तदनंतर समय से लेकर कृष्टिकरण काल होता है, यानी इस काल में, इस एक अंतर्मुहूर्त में कृष्टि करने का कार्य चालू होता है। एक तो अर्थात अश्वकर्णकरण काल के समाप्त होने से, काल समाप्त हुआ अश्वकर्ण का, एक ही एक वो काल उनका एक समान है, अश्वकर्ण सहित अपूर्व स्पर्धक काल उतना ही है, दोनों प्रोसेस दोनों अलग है। अलग इसलिए कि हमने देखा था क्रोध का भी अनुभाग मैक्सिमम है, उसके अनंत विभाग प्रमाण मान का, उसके अनंत विभाग प्रमाण माया का, उसके अनंत विभाग प्रमाण लोह का, और अपूर्व स्पर्धक में उसका प्रोसेस ही अलग था। अपूर्व अपूर्व स्पर्धक बनते थे, लोभ में सर्वाधिक बने और बाकी में विशेषहीन बने अपूर्व स्पर्धक। एक तो अर्थात अश्वकर्णकरण काल के समाप्त होने से ऊपरी मनंतर समय से लेकर कृष्टिकरण काल होता है, अतः इस समय उसकी प्ररूपणा करेंगे, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अब इस काल के प्रमाण का उदाहरण करने के लिए आगे के सूत्र का अवतार करते हैं। यानी वो काल कितना है तो अंतर्मुहूर्त, फिर भी उसको बताएंगे कहां से लेना उसको और कब तक लेना। छसु कम्मेसु संतेसु संक्षुद्धेसु जा कोदवेदगद्धा तिस्से कोदवेदगद्धाए तिन्नी भागा जो तथ पढ़मति भागो अस्य कर्ण करणद्धा विदियोति भागो किट्टी करणद्धा तदीयति भागो किट्टी वेदगद्धा। तीन भाग किए, किसके? क्रोध वेदक काल के। देखो यहाँ क्या कहते हैं, और फिर क्रोध वेदक तो पहले से था, पूर्वकरण के शुरू से उसका क्रोध वेदक यानी क्रोध का उदय चल रहा था, परंतु यह फिर लिमिट बताए कहां से क्रोध वेदक लेना है। तो छह नौकशायों के संक्रमण होने पर, इसका संक्रमण पूरा होता है उसी अंत समय में पुरुष वेद का भी उदय समाप्त हुआ है, या अन्य भी जो कुछ है, अभी क्रोध से चढ़ने वाले की बात है, जिस किसी कषाय का वहां उदय हो वेद का, परंतु जब वो छह नौ कषायों की क्षपणा पूरी होती है, संक्रमण होता है, नपुंसक वेद स्त्री वेद सहित चढ़ने वाले के कहेंगे सातों की पूरी हो गई एक साथ, पुरुष वेद के लिए कहेंगे सत्ता भी है बाकी उसकी, इसलिए उसका वेद का नाम नहीं लेते हुए क्या कह दिया, छह नौकशायन की क्षपणा यहां पूरी हुई। तो कहते छह नौकशायन के संक्रमण होने पर, ये संक्रमण के द्वारा क्षपणा होती है, इसलिए संक्रमण शब्द यहां लिया हूं। होने पर जो क्रोध वेदक काल है, पहले से क्रोध का उदय चालू रहा था, परंतु अभी यहां से इस पॉइंट से लेकर आगे की बात चल रही, यानी अब वो अपगत वेदी हो गया, अपगत वेदी होने पर क्रोध वेदक काल कहते हैं, वहां तक उसका क्रोध का उदय है, बंध भी चारों का है, उसके बाद क्या होगा, वो मान वेदक कहलाएगा और बंध मान माया लोक का तीन का होगा। अब ये जो क्रोध वेदक काल है, उसने उन्होंने तीन भाग किए, त्रिभाग किए, पहला त्रिभाग, दूसरा त्रिभाग, तीसरा त्रिभाग। पहले त्रिभाग में अश्वकर्ण करण है और वहीं पर अपूर्व स्पर्धक होते हैं, दूसरे त्रिभाग में कृष्टिकरण यानी कृष्टि करने का कार्य होता है, और तीसरे त्रिभाग में कृष्टि वेदने का कार्य, वेदना यानी उदय होना। अब इसको कहते हैं सूत्र में, छह नौकशायों के संक्रमण होने पर जो क्रोध वेदक काल है, उस क्रोध वेदक काल के तीन भाग है, उसमें जो प्रथम त्रिभाग है वह अश्वकर्ण अश्वकर्ण करण काल है, दूसरा त्रिभाग पुष्टिकरण काल है और तीसरा त्रिभाग पुष्टि वेदक काल है। पुरुष वेद के पुराने सत्कर्म के साथ, पुराना सत्कर्म कहा यानी नवक समय प्रबद्ध को छोड़कर, चरण कर्मों के संक्रमित होने पर उससे आगे जो क्रोध वेदक काल है, यानी आगे के क्रोध वेदक काल की बात है, इसके पूर्व से क्रोध वेदक काल चला आया था उसकी बात नहीं है। आगे के यानी नेक्स्ट, उसके पश्चात वाले। हाँ, गुजराती लोगों के लिए आगे के यानी उसके पश्चात जो क्रोध वेदक काल है, उसके तीन भाग करने पर उनमें जो प्रथम त्रिभाग है वह अश्वकर्ण करण काल रूप से कहा गया है, उसकी तो हमने विस्तार से चर्चा देखी। दूसरा त्रिभाग यह पुष्टिकरण काल रूप से इस समय प्रवृत्त है, इस समय इसलिए कहा क्योंकि उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और तीसरा त्रिभाग भी आगे पुष्टि वेदक काल रूप से प्रवृत्त होगा, यानी पुष्टिकरण के इमीडिएट बाद पुष्टि वेदक काल होगा। यही सूत्र का समुच्चय रूप अर्थ है, यानी टोटल अर्थ है उसका। ये तीनों ही काल सदृश नहीं है, किंतु उनमें से प्रथम त्रिभाग बड़ा है, दूसरा त्रिभाग विशेषहीन है और तीसरा त्रिभाग विशेषहीन है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। देखो, जैसे मान लेते हम 1000 समय लेंगे और उसको 10 से भाग देंगे, तो बहुभाग यानी 9 भाग हुए, यानी 10 से भाग देंगे तो 100 रह गया, दस से भाग देते 100 हो जाएगी। तो अभी इसमें है क्या आगे लिया उन्होंने, एक भाग 100 हो गए तो 100 निकालना, 100 अलग निकालना 1000 में से, 900 रह गए, उसके इक्वल तीन भाग करना, 300 300 300। अब जो 100 है उसको फिर 10 से भाग दो तो 10 रहेगी, वो अलग निकालो, 90 रहेगी, वो एक में पहले में दे दो, 390 करो, फिर 10 रहेगी ना, उसमें से 9 और एक ऐसा करो तो दूसरे में 309 हो जाएंगे और तीसरे में 301 हो जाएंगे, टोटल 1000। मैंने फॉर एग्जाम्पल बताया विशेषण किस तरह, फिर भी हम राउंड अबाउट त्रिभाग कहेंगे ना, इसको त्रिभाग कह सकते हैं, 390 309 और 301। ये उन्होंने नहीं दिया होगा, ये मैं बता रही हूँ आपको जस्ट किस तरह से उसको निकालना है। विशेषार्थ, यहाँ अपूर्व स्पर्धकों की रचना करने के अनंतर प्रत्येक समय में नए नए अपूर्व स्पर्धक होते 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 अंतर्मुक्त तक बन गए, पहले त्रिभाग में, उसके पश्चात उनके अनुभाग के नीचे, पहले क्या किया था पूर्व स्पर्धक के नीचे अनुभाग इतना गढ़ गया कि अपूर्व स्पर्धक बने, अभी जितने अपूर्व स्पर्धक बने लोअर मोस्ट जो है सबसे नीचे उसके भी नीचे और रचना हो जाएगी, उसके नीचे अनुभाग के नीचे उसे उत्तरोत्तर अनंत गुणा अनंत गुणाहीन करके, अभी तो अपूर्व स्पर्धक बने थे उसमें एक बार अनंत गुणाहीन हुआ था टॉप मोस्ट वर्गना में, बाद में एक एक अविभाग प्रतिच्छेद से हीन वर्गनाएं बनी थी, फिर दूसरा स्पर्धक फिर तीसरा स्पर्धक ऊपर से नीचे बताते समय, यानी प्रति वर्गना एक एक अविभाग प्रतिच्छेद नीचे से ऊपर बढ़ता है, या ऊपर से नीचे कहेंगे तो घटता है कहेंगे। अब क्या होगा, अब ये जो पहले तो बनी उसको हमने वर्गना नाम दिया था, अब इसको पुष्टि नाम देंगे, रचना तो वैसे ही होगी, इतने प्रदेश नीचे नीचे बढ़ते चले जाएंगे, जिसको हमने वर्गना नाम दिया था अभी उसी को कृष्टि कहेंगे, क्योंकि परकृष्टि प्रतिकृष्टि अनुभाग ऊपर से नीचे अनंत गुणाहीन अनंत गुणाहीन अनंत गुणाहीन एक एक कृष्टि में इतना डिफरेंस होता है, यानी अनुभाग का इतना घटना होगा, एक एक समय में इतनी इतनी कृष्टि बनेगी। यही कहते हैं कि जो जघन्य अपूर्व स्पर्धक की आदि वर्गना थी ना, उसके भी नीचे उत्तरोत्तर अनंत गुणा अनंत गुणाहीन, उत्तरोत्तर ने एक एक कृष्टि में अनंत गुणाहीन अनंत गुणाहीन अनंत गुणाहीन आदि वर्गणा के नीचे कृष्टि में, अभी उसको वर्गणा कहेंगे नहीं, कृष्टि कहेंगे, उत्तरोत्तर अनंत गुणाहीन अनंत गुणाहीन करके कृष्टि रूप से कैसे परिणमाता है, इस विषय पर सांगोपांग विचार किया जा रहा है, वो तभी सब बातें आएगी विस्तार से। इस प्रसंग से सर्वप्रथम यह जानना जरूरी है कि पूर्व स्पर्धक अपूर्व स्पर्धक और पुष्टिकरण कहते किसे हैं। यह तो हम इसी ग्रंथ के भाग 13 में ही बतलाए हैं कि उपशम श्रेणी में पूर्व स्पर्धक रूप रचना तो रचना जो अनादि संसार से लेकर होती आ रही है, उससे नीचे यह अनिवृत्ति उपशमक जीव मात्र लोभ संज्वलन की सूक्ष्म पुष्टिकरण की क्रिया को ही संपन्न करता है। उसके पहले बादर पुष्टि उसकी नहीं होती ना, बादर पुष्टि सूक्ष्म पुष्टि होती है परंतु लोभ में ही होती है, अन्यत्र नहीं होती। किंतु यहाँ क्षपक श्रेणी में यह जीव पूर्व स्पर्धकों के नीचे अश्वकरण करण के काल में चारों कषायों के अपूर्व स्पर्धकों की रचना करता है, यह क्षपक श्रेणी में कार्य होता है मात्र। और अश्वकरण करण का काल संपन्न होने के अनंतर समय अनंत समय से लेकर पुष्टिकरण की क्रिया संपन्न करता है। अतः यहाँ इनके लक्षणों पर प्रकाश डाल देना आवश्यक प्रतीत होता है, यथा ये सब विशेषार्थ में वो अधिक हमें समझा रहे हैं। अनादि संसार अवस्था से लेकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में अश्वकरण करण क्रिया के प्रारंभ करने के पूर्व तक एक शपथ की अपेक्षा बात की, उपशम श्रेणी में ऐसा कोई अश्वकरण करण नहीं होता। यह जीव जो अनुभाग स्पर्धकों की रचना करता है उन्हें पूर्व स्पर्धक कहते हैं, भले वो मुनिराज हो कोई भी हो तो पूर्व स्पर्धक ही चल रहे हैं। जब जाके क्षपक श्रेणी चढ़ते हैं और अनिवृत्तिकरण में आते हैं और इतना भाग उसका बीत जाता है, अपगत वेद होने पर वो अपूर्व स्पर्धक की रचना होती है। तो अभी तक तो पूर्व स्पर्धक थे। दूसरा पॉइंट, संसार अवस्था में जो स्पर्धक कभी भी प्राप्त नहीं हुए, यहां तक कि जो स्पर्धक उपशम श्रेणी में भी प्राप्त नहीं हुए हैं, मात्र क्षपक श्रेणी में ही अश्वकरण करण के काल में पूर्व स्पर्धकों में से उनके नीचे अनंत गुणहानि रूप से अपवर्तित होकर यानी अनुभाग घटकर जिन स्पर्धकों की रचना यह जीव करता है उन्हें अपूर्व स्पर्धक कहते हैं। ये बात ख्याल में ही यहां तक। अब तीसरा पॉइंट, जिस प्रकार स्पर्धकों में अनुभाग की अपेक्षा क्रम वृद्धि और क्रम हानि होती है, नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो क्रम वृद्धि कहेंगे, ऊपर से नीचे की ओर क्रम हानि, क्योंकि एक एक वर्गणा में क्रम से हानि होती है। कितनी हानि होती है, एक एक अविभाग प्रतिच्छेद घटता चला जाता है। और स्पर्धक टू स्पर्धक देखेंगे, आदि वर्गणा टू आदि वर्गणा, तो नीचे से ऊपर हम कहेंगे दो गुना तीन गुना चार गुना इस तरह से होता है, इसको क्रम वृद्धि क्रम हानि के। उस प्रकार जहां अनुभाग रचना में क्रम वृद्धि और क्रम हानि नहीं पाई जाकर यथासंभव, तो क्या होता है, वहां क्रोधादि चारों संज्वलन कषायों के पूर्व स्पर्धकों और अपूर्व स्पर्धकों में से उनके नीचे प्रदेश पुंज का अपकर्षण कर उत्तरोत्तर अनंत गुणित हानि रूप से, वह पहले कैसा था क्रम वृद्धि क्रम हानि थी, अब अनंत गुणी हानि हो रही। अनुभाग की रचना करना उसको उसकी कृष्टिकरण संज्ञा है, यानी कृष्टि की रचना होती है। पहले हमने जो रचना होती थी उसको अपूर्व स्पर्धक कहा था, अब जो रचना होगी हीन अनुभाग वाली उसको कृष्टि कहेंगे। यह कृष्टिकरण विधि अश्वकर्ण करण विधि के संपन्न होने के अनंतर समय से प्रारंभ होकर पूर्वोक्त कथन के अनुसार द्वितीय त्रिभाग में संपन्न होती है। अब इस प्रकार के कृष्टिकरण काल के प्रथम त्रिभाग में, कृष्टिकरण काल का प्रथम त्रिभाग लिया गया, क्रोध वेदक का पहला त्रिभाग नहीं, कृष्टिकरण का पहला त्रिभाग, जो स्थितिबंध आदि विषय व्यापार विशेष होता है, उसका कथन करने के लिए आगे का सूत्र प्रबंध आया है। कृष्टिकरण अध्याय पढ़ने समय प्रथम त्रिभाग में नहीं है, प्रथम समय में। भाई मुझे आश्चर्य लगा, ऊपर पढ़ेंगे, देखो तीसरा पॉइंट है ऊपर, संपही मिला, प्राकृत में बता रही हूँ, संपयने सांप्रत में यानी वर्तमान में, एवं विहाय इस प्रकार कृष्टिकरण अध्याय पढ़म समय, और यहाँ प्रथम त्रिभाग में चाहे वो निकाल कर प्रथम समय में चाहिए। क्योंकि अभी तक जो अपूर्व स्पर्धक बने उसके अंत समय में कितना स्थितिबंध था वो हम देख के आए, अब यहाँ कितना होता है उसकी चर्चा। फिर पढ़ती हूँ मैं तीसरा पॉइंट। अब इस प्रकार के कृष्टिकरण काल के प्रथम समय में जो स्थितिबंध आदि विषय व्यापार विशेष होता है, स्थितिबंध आदि यानी स्थितिबंध स्थिति सत्व वगैरह, उसका कथन करने के लिए आगे का सूत्र प्रबंध आया है। सूत्र अश्वकर्ण करणे निठिदे तदो से काले अन्नोठिदि बंधो, निठिदे ने अभी समाप्त हुआ अश्वकर्ण का, अश्वकर्ण करण के समाप्त होने पर उसके बाद अनंतर समय में अन्य स्थितिबंध होता है। स्थितिबंध लगातार अंतर्मुहूर्त तक होता है समान, फिर उसमें कटौती होती है। तो अश्वकर्ण के अंतिम जो उसका स्थितिबंध हुआ था, अब नया स्थितिबंध होगा, उसका प्रमाण बताएंगे।
अश्वकर्ण काल में भी स्थितिबंध हजारों बार
होंगे,
हजारों
स्थितिकांड घात और स्थितिबंध अपसरण हुए थे अश्वकर्ण करने काल, कल ही बात आई थी। और उतने हर समय में अपूर्व स्पर्धक बने हैं, फिर भी पहले समय से दूसरे समय में असंख्यात प्रभाग असंख्यात प्रभाग असंख्यात प्रभाग सब मिलकर भी एक गुना नहीं होती, ये कल बताई थी, कल आपको याद किया था। देखो चौथा पॉइंट, ये सूत्र से नीचे अश्वकर्ण करण काल के अंतिम समय में संयम समय यो काम पहले यो काम न करो, समय में पूर्व के स्थितिबंध के समाप्त होने पर उसके बाद अन्य स्थितिबंध उससे यथा समय कम होकर कृष्टिकरण के प्रथम समय में बांधने के लिए ग्रहण करता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। संजोलनों का यह स्थितिबंध अंतर्मूर्त कम आठ वर्ष प्रमाण होता है, क्योंकि कल हमने देखा था अश्वकरण के अंत में या अपूर्व स्पर्धक करण के अंत में जो स्थितिबंध होता है वो कितना है संजोलनों का, तो 8 वर्ष प्रमाण होता है। पहले 8 वर्ष किसका देखा था, जब पुरुष वेद का अंतिम स्थिति बंध हमने 8 वर्ष का देखा था, उस पॉइंट पर संजोलन का 16 वर्ष को होता था। अब यहां पर नहीं, कुछ कम हुआ अपूर्व स्पर्धक के पहले समय में, कुछ कम था, परंतु पुरुष वेद का जहां 8 वर्ष था, यानी सवेद भाग का अंतिम, तब इसका भी 16 वर्ष था। अब अपूर्व स्पर्धक का अंतिम स्थितिबंध 8 वर्ष का है संजुलन का। अब आगे जाके नेक्स्ट समय में अंतर्मूर्तम 8 वर्ष होगा, जब कृष्टिकरण शुरू होता है, तो वहां होने वाला कितने, वहां क्या बंध किसका चल रहा है, मुनि की कितनी प्रकृति बन रही है अभी, हाँ संज्वलन के चारों, क्योंकि जब तक अभी क्रोध वेदक चल रहा है तो चारों संज्वलन बन जाएंगे। तो यहां पर अभी कृष्टिकरण का काल शुरू हुआ है, क्रोध वेदक का द्वितीय त्रिभाग चालू हो गया है, इस समय कितना है स्थितिबंध, 8 वर्ष में एक अंतर्मूर्तम। अपूर्व स्पर्धक के अंत में बिल्कुल समान होता है, ये तो अनिवृत्तिकरण से ही समान स्थितिबंध हमने देखा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। हमने ये भी बात कल पढ़ी थी कि स्थिति सत्व जो है मुनि का और तीन घाती का संख्यात वर्ष हो जाता है, और नाम और गोत्र का वहां पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण, स्थिति सत्व है सत्ता का, बंध तो सबका संख्यात वर्ष, संख्यात वर्ष हो जाता है। अब देखेंगे शेष कर्मों का पूर्व के स्थितिबंध से संख्यात गुणा होता है, क्या संख्यात गुणा, 3 चाहिए ना, शेषाणम कम्माणम पूवल पूविल ठिदिबंधादो संख्येज्य गुणहीनो, संख्यात गुणहीन होता है चाहिए। क्योंकि है उससे अधिक तो होगा ही नहीं ना, घटते ही चला जा रहा है, अर्थात शेष कर्मों का तत्प्रायोग्य संख्यात हजार वर्ष प्रमाण जानना चाहिए, यानी पहले भी संख्यात हजार वर्ष था, मान लेते ना 80,000 है और अभी 20,000 होगा तो भी उसको संख्यात हजार ही कहेंगे, तो 4 गुणा हानि हुई ना, 80,000 से 20,000 हुआ, ये तो मैं आपकी आपको संदृष्टि बता रही हूं, तो उसको क्या कहेंगे, 4 गुणाहीन हुआ। ऐसे ये संख्यात गुणाहीन होकर भी संख्यात हजार वर्ष का यहां स्थितिबंध है। अन्नम अनुभाग खंडयम अश्वकर्ण करणेनेव आगाइदम, अन्य अनुभाग कांडक अश्वकर्ण करण के आकार रूप से ही ग्रहण किया है। ये क्या कहना चाहते, अश्वकर्ण अभी कर दिया उन्होंने, लोभ का मैक्सिमम और सॉरी क्रोध का मैक्सिमम लोभ का मिनिमम अनुभाग हो गया, अब ये जो प्रपोर्शन है ऐसा ही कायम रखते हुए कांडक को ग्रहण करेगी, ये बात कहना चाहते, यानी वो अश्वकर्ण वाली जो एक पोजीशन बनी है वो भी कंटिन्यू रहेगी।
कांडक की तो ऊपर का लेवल तो समान है सभी का, खाली नीचे नीनाधिक हो रहा है, लोक का सबसे लो है।
देखो कांडक पूर्व स्पर्धकों में हो रहे हैं,
और जो ऊपर का लेवल है अनुपात की अपेक्षा वो तो सभी का समान है, नीचे हमने देखा तो लोक का मिनिमम हो जाता है, और
ऊपर का समान कहाँ है, ऊपर का समान अपूर्व अपूर्व में है, पूर्व में नहीं, हमने क्या देखा था, पहला एक अनुभाग कांडक हुआ था जब क्रोध मान माया लोभ में, तो मान का कांडक छोटा और लोभ का मैक्सिमम दिया देखा था, उसके बाद अभी ये बीच वाली लाइन पूर्व स्पर्धकों का लोअर लिमिट है, एक अनुभाग कांडक होता है अश्वकर्ण में, तब पोजीशन क्या होती है, क्रोध का अनुभाग ज्यादा है, उसके अनंत वे भाग प्रमाण मान का, उसके अनंत वे भाग प्रमाण माया का, उसके अनंत वे भाग प्रमाण लोक का, ये शेष रहा अनुभाग ऐसा है, पूर्व स्पर्धकों में ऊपर की लेवल अलग है, नीचे की लेवल एक समान है। अपूर्व स्पर्धकों में उसके भी ऊपर की लेवल समान है। और इसमें कितने कितने बने?
सब क्रोध में कम,
क्रोध में विशेष अधिक बने। तो इसमें इतने बने, इसमें इतने बने, इसमें इतने बने, इसमें इतने बने। अभी अनुभाग कांड कहाँ का होगा? जो मैक्सिमम अनुभाग है उसका होगा। तो सब में मान लेते इतना इतना कट होगा, तो ऐसा ही कट होगा कि ये जो अश्वकर्ण रूप से प्रपोर्शन बना है वो ऐसा ही रहेगा, ऐसे उसके कांडक बनेंगे। ये बात बताना चाहते हैं। कांडक यानी अनुभाग का सत्ता में से जो अनुभाग का घात होना, यानी मैक्सिमम अनुभाग वाले निकल जाएंगे और वो परमाणु नीचे अपूर्व स्पर्धकों में और कुष्ठियों में डिवाइड होंगे, विभाजित होंगे। यहाँ क्या लिखा? अन्य अनुभाग कांडक, क्योंकि नया अनुभाग कांडक शुरू हुआ इसलिए अन्य कहा। ऐसे हजारों बीत चुके पहले, अब यहाँ पर भी नया अनुभाग कांडक शुरू हो गया। जैसे नया स्थिति बंद हुआ, नया स्थिति कांडक घात भी होगा, नया अनुभाग कांडक घात जो कांडक रूप से शुरू किया उसने, उसका भी नया चालू होगा। तो वो भी कैसे है? अश्वकर्ण करण के आकार रूप से ही ग्रहण किया, क्योंकि ऐसे ही कांडक लेंगे तो क्रोध में मैक्सिमम रहेगा अभी बाकी, और बाकी में अनंत गुणाहीन वाला रहेगा। ये प्रपोर्शन अभी यहाँ से आगे रहेगा। संसार अवस्था में क्या देखा था? मान का मिनिमम था, फिर क्रोध का, फिर माया का, फिर लोभ का सर्वाधिक था। अब क्रोध में मैक्सिमम और लोभ में मिनिमम ऐसा भी बना है। ये जो बना है वो तो चालू रहेगा। इस समय चार संजलनों के अन्य अनुभाग कांडक को ग्रहण करते हुए अश्वकर्ण करण के आकार रूप से ही ग्रहण किया है, इसलिए कांडक रूप से ग्रहण किया गया अनुभाग लोभ में स्तोक होकर मायादि की परिपाटी के अनुसार यथाक्रम उत्तरोत्तर अनंत गुणित क्रम से जानना चाहिए। इस प्रकार ये यहाँ सूत्र का अर्थ है। यानी जो कांडक के बाद अभी शेष रहेगा क्रोध में मैक्सिमम, लोभ की तरफ से बताने तो लोभ से अनंत गुना माया का, उसे अनंत गुना मान का, उसे अनंत गुना क्रोध। पुनः ज्ञानावरणादि कर्मों के अनुभाग का घात अश्वकर्ण करण विशेष से रहित होकर पहले घात करने से जो अनुभाग शेष रहा है उसके अनंत भूभाग को ग्रहण कर प्रवृत्त होता है। उसमें कोई अश्वकर्ण की बात नहीं है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि अश्वकर्ण करण का नियम चार संजोलनों में ही प्रतिबद्ध है। एक क्रोध मान माया लोभ में ये बात लागू होती मात्र। विशेषा उक्त सूत्र द्वारा चार संजोलनों का अनुभाग ही अश्वकर्ण के आकार रूप से घात के लिए ग्रहण किया जाता है, यह स्पष्ट किया गया, क्योंकि ज्ञानावरणादि कर्मों का घात करने के बाद जो अनुभाग शेष रहता है उसका अश्वकर्ण करण के आकार रूप से रचना न होकर वह प्रति समय अनंत भाग रूप के घात के लिए प्रवृत्त होता है, यह इस अनंत बहुभाग रूप से घात के लिए प्रवृत्त होता है, यह इस सूत्र का तात्पर्य है। प्रति समय क्यों लिखा? प्रति समय शब्द निकालना चाहिए, क्योंकि ऊपर क्या लिखा है? अनुभाग का घात होता है, वो भी कांडक घात होगा, वो भी अंतर्मूर्त में होगा, एक एक अंतर्मूर्त में उसके भी अनुभाग कांडक घात हो गए, तो कांडक रूप से होता है, प्रति समय नहीं होता, प्रति कांडक कहते हैं, कह सकते हैं। या प्रति समय एक एक फाली उसकी उस रूप से ही निकलती रहती है, क्योंकि एक बार कांडक निश्चित किया तो उसी में से फाली निकलती रहेगी। वे प्रति समय निकाल देना वह अनंत बहुभाग रूप से घात के लिए। पेंसिल से उसको निकाल देना। वे विशेषार्थ इसलिए ऊपर उसका रेफरेंस नहीं देख सकते हैं। यह सूत्र का तात्पर्य है। अब आगे का सूत्र देखेंगे। अन्नम ठिदिखंडयम चतुर्णम घाति कम्माणम संख्येज्जानी वस्स सहस्राणी। चार घाती कर्मों का संख्यात हजार वर्ष प्रमाण अन्य स्थिति कांडक होता है। अभी स्थिति का घटना भी कांडकों में होता है, तो यहाँ अन्य स्थिति कांडक चालू हो गया, क्योंकि उन कर्मों का स्थिति सत्कर्म संख्यात हजार वर्ष प्रमाण। स्थिति बंध अलग बात है, स्थिति सत्कर्म अलग बात है। स्थिति बंध कितना देखा था हमने, संज्वलनों का आठ वर्ष में अंतर्मूर्त कम और बाकी का संख्यात हजार वर्ष, उससे भी संख्यात गुणाहीन ऐसा स्थिति सत्व होगा और कांडक भी संख्यात हजार वर्षों का होगा। कांडक बंध जो है अन्य कर्मों में जो बंध होता है वो संख्यात हजार वर्षों का, और कांडक रूप यानी सत्ता की स्थिति घट जाना वो कांडक में हो जाती है। वो भी कितने स्थिति घट जाएगी एक अंतर्मुख में, तो संख्यात हजार वर्ष यथा योग्य समझना उसका प्रपोर्शन।
ये कांडक स्थिति की अपेक्षा द्वितीय स्थिति,
ये सब द्वितीय कांडक होते हैं तो टॉप मोस्ट के होते हैं, तो द्वितीय स्थिति में ही समझना। अनुभाग तो सर्वत्र पड़ा है, अनुभाग तो आड़े रूप से हम समझाएंगे। अनुभाग तो सर्वत्र है, प्रत्येक निषेक में है, तो अनुभाग का घटना तो सभी में होगा। देखो, क्योंकि ये जो कांडक है वो भी संख्यात हजार वर्ष का है, क्योंकि उन कर्मों का स्थिति सत्कर्म संख्यात हजार वर्ष प्रमाण होता है, इसलिए प्रत्येक स्थिति कांडक संख्यात गुणी हानि रूप से प्रवृत्त होता है, ऐसा स्वीकार करने पर उस स्थिति सत्कर्म के तत्प्रमाण मानने में विरोध आता है। ये संख्या चार घाती कर्मों का ही लिया, संख्यात हजार वर्ष स्थिति सत्व भी है और कांडक भी संख्यात हजार वर्ष का होता है। अन्य कर्मों में क्या होता है, आयु में तो कोई परिवर्तन होता नहीं है। वेदनीय नाम और गोत्र का स्थिति सत्कर्म कितना है, यहाँ पर पल्ले का संख्या का, भले उसका स्थिति बंध संख्यात हजार वर्ष हो रहा है परंतु स्थिति सत्कर्म पल्ले का असंख्यात भाग है। बहुभाग क्या कह रहे हैं, कांडक की बात है, मैं स्थिति सत्व की बात कर रही हूँ, अच्छा आपने नीचे पढ़ लिया पहले, इसलिए मेरा प्रश्न क्या था, स्थिति सत्व कितना है, तो पल्ले का असंख्यात भाग है, उसमें से बहुभाग का कांडक तो होता ही है। जब तक ये दुरापकृष्टि तक पहुंचे थे उसके बाद तो बहुभाग बहुभाग का कांडक हो रहा था। बराबर है, सत्कर्म सत्कर्म बंध नहीं, सत्कर्म भी संख्यात हजार, बंध भी संख्यात हजार। नाम गोत्र की बात कर रही हूँ, नाम गोत्र और वेदनीय पल्ले के असंख्यात भाग है और चार घाती कर्म स्थिति सत्कर्म संख्यात हजार वर्ष है। ख्याल में है ना, बंद एक बार बंद बात आती है, एक बार सत्व की बात आती है, अगर वो उसको ख्याल नहीं रखेंगे तो कंफ्यूजन होता है। एक बार संख्यात हजार कहते हैं, एक बार ऊपर अभी आठ वर्ष कह आए, तो आठ वर्ष संज्वलनों का स्थिति बंद था, अन्य तीन का स्थिति बंद भी संख्यात हजार वर्ष है, सत्व भी संख्यात हजार वर्ष है वो बड़ा वाला है, और कांडक भी संख्यात हजार वर्ष है। अरविंद को कोई प्रश्न है? अब आगे का सूत्र देखें। नामा गोद वेदनीयानम असंख्येज्जा भागा। असंख्यात बहुभाग किसका, स्थिति सत्कर्म जो है, तो असंख्यात बहुभाग होने के लिए असंख्यात वर्षों का होना चाहिए। सत्ता में पड़े हुए असंख्यात में थे तभी तो असंख्यात बहुभाग का कट होगा, उसका घात होगा। तो कहते हैं तथा नाम गोत्र और वेदिनी कर्म का अन्य स्थिति कांडक, अन्य इसलिए पूर्व से यहाँ जितनी स्थिति घटती है वो कांडक भी अभी छोटा होगा, फिर भी असंख्यात वर्षों का होगा। तो असंख्यात बहुभाग प्रमाण होता है। इन तीन अघाती कर्मों का, ये कौन से तीन अघाती कर्म नितिन भाई? हाँ बहुत अच्छा, नाम गोत्र और वेदनी, अघाती की बात चल रही है। इन तीन अघाती कर्मों का तत्काल होने वाला, क्योंकि अभी इस समय होने वाले की बात है। स्थिति कांडक घात, एक घ बराबर है क्या? ठीक है, पूर्व में घात होने से शेष बचे स्थिति सत्कर्म के असंख्यात बहुभाग प्रमाण है। जितना यहाँ स्थिति सत्कर्म है, क्योंकि अंत में जो कांडक हुआ था स्थिति कांडक, अपूर्व स्पर्धक के लास्ट लास्ट में जो स्थिति कांडक हुआ था उसमें से जो स्थिति सत्कर्म शेष बचा उसका संख्यात बहुभाग का एक कांडक होगा यहाँ, एक एक कांडक, क्योंकि उनका स्थिति सत्कर्म असंख्यात वर्ष प्रमाण होता है इन तीन का, और ज्ञानावरण आदि तीन का कितना होता है? संख्यात हजार वर्ष। इसलिए उसके उस रूप से प्रवृत्त होने में विरोध का अभाव है। अब वही के ऊपर बिंदी है ना, वही यानी वहां ही, यदि बिंदी नहीं होती तो उसका अर्थ होता है वही यानी वह ही, दो अलग ही बात है, वह सेम। यहाँ वही यानी वहीं पर क्रोधादि संज्वलनों के पुष्टिकरण को आरंभ करता हुआ, इस विधि से आरंभ करता है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र प्रबंध आया है। अब पूर्व स्पर्धा कहने वो अश्वकर्ण कर्म हो गया समाप्त, अभी इस नए समय में क्या होता है, जिसको पुष्टिकरण काल कहा, इस समय नया स्थिति बंध, नया स्थिति सत्कर्म, नया स्थिति कांडक वगैरह सब, नया अनुभाग कांडक चालू हो जाए, उसकी चर्चा कराए। अब पुष्टिकरण की विधि बताएंगे। पढ़म समय किट्टी कारगो कोधादो पूर्व फद्दये हिंतो च अपूर्व फद्दये हिंतो च पदेशगम ओकड्डी युण कोह किट्टियो करेदी माणादो ओकड्डी युण माण किट्टियो करेदी माया दो ओकड्डी युण माया माय हो गया माया किट्टियो करेदी लोभा दो ओकड्डी युण लोभ किट्टियो करेदी। हमने देखा था ये कट होते होते पूर्व स्पर्धक भी है ना, अभी मिट गए नहीं पूरे, पूर्व स्पर्धक भी है, अपूर्व स्पर्धक भी है उसके नीचे, अभी ये दोनों मिलकर एक साथ बताएंगे। अब क्या होगा इसके नीचे क्या बनेगी? पृष्टि बनेगी। तो पृष्टि बनने के लिए परमाणु कहाँ से आएंगे? तो पूर्व स्पर्धक और अपूर्व स्पर्धक में से अपकर्षण होकर नीचे आएंगे, तो क्रोध में से क्रोध की पृष्टि बनेगी, मान में से मान की बनेगी, माया की बनेगी, लोभ की बनेगी। ये बात अभी हमने पढ़ी, फिर हिंदी में पढ़ेंगे। देखो प्रथम समय में पुष्टिकारक जीव क्रोध संबंधी पूर्व स्पर्धकों और अपूर्व स्पर्धकों से प्रदेश पुंज का अपकर्षण करके यानी परमाणुओं को अपकर्षित करके, यहाँ जो अपकर्षण बता रहे वो अनुभाग की अपेक्षा समझ रहे, क्योंकि अभी अनुभाग का वर्णन चल रहा है। स्थिति में जहाँ जो योग्य अपकर्षण हो रहा है वहां हो ही रहा है, उसके साथ अनेक परमाणुओं का सत्ता में से भी अनुभाग की घटना चल रहा है। अपकर्षण करके क्रोध पृष्टियों को करता है, मान संज्वलन से अपकर्षण करके मान पृष्टियों को करता है, माया संज्वलन से अपकर्षण करके माया पृष्टियों को करता है, और लोभ संज्वलन से अपकर्षित करके लोभ पृष्टियों को करता है। ये फुल स्टॉप देना है, पूर्ण विराम। अभी पृष्टि कारक की बात करेंगे हम, आगाल प्रत्यागाल जरूर होगा, क्योंकि क्या है वहां पर आगाल प्रत्यागाल कहाँ होता है? स्थिति की अपेक्षा। अब अनुभाग की अपनी बात चल रही है, ख्याल में है ना? स्थिति की जब बात करेंगे तो आगाल प्रत्यागाल कहेंगे, अनुभाग में आगाल प्रत्यागाल का संबंध नहीं है, उसमें कोई बीच में अंतर है ही नहीं। तो यहाँ तो हम ये कृष्टियों की रचना है, यहाँ कोई अंतर नहीं है, ये मैंने पूर्व अपूर्व बताने के लिए बताया है। आगाल प्रत्यागाल किसको कहते हैं? द्वितीय स्थिति से परमाणु नीचे प्रथम स्थिति में आना, क्योंकि बीच में अंतर किया है। ये निषेकों की रचना है ना, इसमें हमने देखा था बीच में अंतर करता है ये नीचे, ये क्रोधादि के यहाँ, अभी तो क्रोध एक का उदय चल रहा है, बाकी मान माया लोक के परमाणु ऊपर पड़े, ये नीचे आना इसको आगाल कहते हैं। नए बंधने के साथ ऊपर चले जाने इसको प्रत्यागाल कहते हैं। उसकी बात यहां नहीं है, क्योंकि आप नए शब्द निकालेंगे तो इनको समझाना पड़ेगा आगाल प्रत्यागाल क्या है, है ना? फिर कोई बात नहीं, पूछना, क्योंकि ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अंतर कहां पड़ा है? स्थिति में। अनुभाग में तो बस जितना जहां अनुभाग है, पहली स्थिति में हो या द्वितीय स्थिति में, उनका अनुभाग घट रहा है। यहां तक क्लियर होगा? अभी आगे सूत्र पढ़ा हमने, आगे
यहाँ पे जो छपक श्रेणी में जो प्रथम स्थिति में जो पनपर घटता है, निषेक की रचना होती है, चारों की अंतर्भूत प्रमाण होती है, जिसके उदय के साथ
जिसका उदय है उसके अंतर्भूत,
बाकी की एक आवली प्रमाण है।
वो तो निकल गई कब की, जब अंतर किया उसमें एक आवली में वो नष्ट हो गई।
नहीं तो यहाँ पे तो चारों की बात बता रहे हैं, चारों में पुष्टिकरण हो रहा है,
वो द्वितीय स्थिति में है ना, बाकी सब परमाणु। अभी पुष्टि का वेदक नहीं है, पुष्टि का वेदक नहीं अर्थात यहाँ उदय किसका चल रहा है? अभी तो उसमें पूर्व पूर्व स्पर्धकों में से यथायोग्य का उदय चल रहा है, अभी पुष्टि का उदय नहीं है, वो पुष्टि वेदक काल में होगा। सारा द्वितीय स्थिति में जितने परमाणु पड़े हैं उनका अनुभाग घट रहा है, उसी को पुष्टिकरण कहते हैं। क्योंकि मात्र क्रोध है उसकी पहली स्थिति, यहाँ अन्य मान माया लोग पहली स्थिति में है ही नहीं इस पॉइंट पर। जब अंतर किया था तो आवली मात्र बनाई थी उनकी, वो तो आवली के अंदर ही नष्ट हो गई है, क्रोध रूप से उदय होकर नष्ट हुई थी वे। हमने तभी ये नियम देखा था, जो अनुदय रूप जो बाकी कषाय है उनकी आवली मात्र रचना हुई थी और उदय रूप की अंतर्मूर्त बनी थी। अब इसमें तो निरंतर ऊपर से परमाणु आते रहेंगे, परंतु क्रोध का ही उदय चलेगा, क्रोध की ही प्रथम स्थिति, अभी वेद भी नहीं रहा, अकेला एक क्रोध ही है यहाँ पर उदय रूप, वो उसकी प्रथम स्थिति है, वो नष्ट होते आएगी तब जाके मान के परमाणु नीचे आएंगे और उसकी प्रथम स्थिति बनेगी। बहुत अद्भुत ये वो प्रोसेस कैसा है, आश्चर्य लगता है। अभी इसका हम 8 नंबर का पॉइंट पढ़ेंगे नीचे, अपूर्व स्पर्धक के करने संबंधी व्यापार विशेष का उपसंहार करके, व्यापार विशेष यानी वहां जो कोई प्रोसेस बना उसका उपसंहार किया, नहीं अभी उसकी बात समेट ली, अभी बता दिया सब। पुष्टिकरण के सम्मुख होकर उनके प्रारंभ करने के प्रथम समय में विद्यमान यह जीव, यानी यह जीव कैसा है, तो अभी उसके अपूर्व स्पर्धक बन चुके, अब पुष्टि करने का कार्य यहाँ से शुरू हो जाता है इस समय से। तो यह जीव प्रथम समयवर्ती पुष्टि कारक संज्ञा वाला होता है, उस जीव को पुष्टि करने वाला, इसलिए पुष्टि कारक कहेंगे, और वो भी प्रथम समय पुष्टि कारक। यह क्रोध संबंधी, ये जरा प्रिंट बराबर करना, क्रोध संबंधी पूर्व स्पर्धकों और अपूर्व स्पर्धकों से प्रदेश कुंज के असंख्यातवे भाग का अपकर्षण करके, हमेशा है ना जितने वहां वर्गणाएं पड़ी है उनकी, द्वितीय स्थिति में पूर्व स्पर्धक भी है अपूर्व स्पर्धक भी है, उनमें से अपकर्षण होना। अभी ये जहां जो पड़े, अभी तो हमने अभी अनुभाग की अपेक्षा कर रहे हैं, अनुभाग की अपेक्षा भले प्रथम स्थिति में भी आउली के ऊपर जो पड़े हैं उसमें भी ये बात होगी, उसका भी अनुभाग का घटना होगा। तो हम तो अभी स्पर्धकों की भाषा में कहेंगे, पहली द्वितीय स्थिति नहीं कहेंगे। तो कहते पूर्व स्पर्धक और अपूर्व स्पर्धकों में से परमाणुओं को अपकर्षण करके, अपकर्षण उसको अनुभाग घटाने को कहेंगे। अपूर्व स्पर्धकों की आदि वर्गणा से नीचे, ये पूर्व स्पर्धक थे यहाँ के ऊपर, ये अपूर्व स्पर्धक, ये उनकी आदि वर्गणा हरेक की अपनी अपनी अलग, उसके नीचे हरेक में बनेगी। अभी क्रोध के नीचे बनेगी, नीचे ऊपर ये द्वितीय पहली स्थिति की अपेक्षा नहीं है, नीचे ऊपर अपने हरेक निषेक में चल रही बात। तो इसके यहाँ पर जो बनेगी अनंत गुणाहीन अनंत गुणाहीन ऐसे जो कुछ रचना हो जाएगी। तो अपूर्व स्पर्धकों की आदि वर्गणा से नीचे अनंत वे भाग में क्रोध कृष्टियों को करता है। अनंतवा भाग किसका? अनुभाग का। इसी प्रकार मान माया और लोभ संबंधी भी अपने अपने प्रदेश पुंज का अपकर्षण करके अपने अपने अपूर्व स्पर्धक संबंधी वर्गणाओं से नीचे बादर कृष्टियों को करता है। यह यहाँ इस सूत्र का समुच्चय रूप अर्थ है। जब कृष्टि कहे तो अभी यहाँ बादर कृष्टि ये शब्द उन्होंने ले लिया, क्योंकि नवे गुण स्थान के अंत में जाकर लोभ की सूक्ष्म कृष्टि बन जाती है, इसलिए हम बादर कृष्टि कह दिया, ये शब्द यहाँ आ गया। अब उन्हें इस प्रकार करता हुआ क्रोध आदि संज्वलन से संबंध रखने वाली वे कृष्टियां कितनी है ऐसी आशंका होने पर उनके प्रमाण का उदाहरण करने के लिए आगे का सूत्र आया है। ये सभी चारों प्रकार की कृष्टियां ऊपर एदाओ सौवाओ भी चौ विहाओ किट्टियो एय फद्दय वगणानम अनंत भागो पगणनादो, ये सभी चारों प्रकार की कृष्टियां प्रकृष्ट गणना की अपेक्षा एक स्पर्धक संबंधी वर्गणाओं के अनंत वे भाग प्रमाण होती है। क्या कहा उन्होंने? पहले हमने देखा था जब पूर्व स्पर्धक थे उसमें से जब अपूर्व स्पर्धक नीचे बने तो कितने बने? ऊपर तो अनंत गुणहानियां, एक गुणहानि में अनंत स्पर्धक है, वो अनंत स्पर्धक एक गुणहानि में जो स्पर्धक थे उसके असंख्यात वे भाग प्रमाण बने थे, ये याद है ना? अब कितना किसके वहां गुणहानि में स्पर्धक थे अनंत, जिसको हमने नव नाम दिया था, उसके असंख्यात वे भाग प्रमाण स्पर्धक बने थे अपूर्व। अब क्या कह रहे? एक एक स्पर्धक में वर्गणा कितनी है? हमने चार मानी थी जो नौ से अनंत गुणा होती है, और उसके अनंत वे भाग प्रमाण, इसका अर्थ है चार के अनंत वे भाग प्रमाण यहाँ कृष्टि बनेगी, नौ के असंख्यात वे भाग प्रमाण अपूर्व स्पर्धक बनते थे प्रति समय। एक गुणहानि में जितने स्पर्धक उसके असंख्यात वे भाग प्रमाण अपूर्व स्पर्धक हर समय बनते थे, या पहले समय बने थे हम कहेंगे, क्योंकि उसके असंख्यात वे भाग दूसरे समय। अभी कृष्टि कितनी बनती है? एक स्पर्धक में जितनी वर्गणाएं हैं, हमने देखा ना अभव्यों से अनंत गुणी होती है, सिद्धों से अनंत वे भाग, तो एक स्पर्धक में जितनी वर्गणाएं वो अपूर्व स्पर्धक में होती है कि पूर्व स्पर्धक में? दोनों की समान होती है। एक एक स्पर्धक में वर्गणाओं का प्रमाण पूर्व हो या अपूर्व हो सेम था, जिसको हमने चार उसकी संदृष्टि बनाई थी, चार छोटा और नौ बड़ा ऐसा नहीं है। एक गुणहानि में स्पर्धकों के लिए नौ संदृष्टि बनाई थी और एक स्पर्धक में वर्गणाओं के प्रमाण के लिए चार संदृष्टि बनाई थी, जो नौ से चार अनंत गुणा है। अब कहते हैं जो चार संख्या है एक स्पर्धक में वर्गणा, यहां यदि टोटल स्पर्धक अगर टोटल वर्गणा अगर देखते गुणहानि में तो एक स्पर्धक में चार, तो 9 में कितना, 9 इंटू 4, अभी उसको 36 नहीं कहते, उसको 8 ही कहते हैं, क्योंकि गुणहानि का प्रमाण 8 कह देते हैं। संदृष्टियां है ये, कुछ संख्या नहीं लेना मुझे। तो यहाँ किसकी बात चल रही है, एक स्पर्धक में जितनी वर्गणाएं होती है उस वर्गणा के अनंतवे भाग प्रमाण कृष्टि बनेगा, यानी कृष्टि सिमिलर टू वर्गणा। जैसे हमने वर्गणाओं में ऐसे प्रदेश हानि देखी थी, ऐसे ही अनुभाग की चर्चा छोड़ो, प्रदेश की अपेक्षा बात करेंगे तो उसको हम ऐसे कृष्टि कहेंगे। तो कृष्टि कितनी बनी, एक स्पर्धक में जितनी वर्गणा होती है उसके अनंत वे भाग प्रमाण नई कृष्टि बनी अभी। अनुभाग तो अनंतवा भाग है ही है, उसकी संख्या भी अनंत वे भाग प्रमाण, तो उसके लिए 4 बाय ख हम कहेंगे। ख यानी अनंत, ख का अर्थ होता है आकाश, आकाश अनंत होता है, इसलिए अनंत के लिए ख लिखने की पद्धति। ये संदृष्टि भूल जाओ, ये तो यदि संदृष्टि में समझते तो आसान होता है, इसलिए बताया था। यहाँ क्या लिखा था, कितना गणना की अपेक्षा, एक स्पर्धक संबंधी वर्गणाओं के अनंत विभाग प्रमाण, ये वर्गणा का प्रमाण है। एक स्पर्धक में वर्गणा का प्रमाण हमने 4 माना था, 4 संदृष्टि है, उसका अनंतवा भाग यानी 4 बाय ख। आगे बढ़े क्या अश्विन का प्रश्न है कोई?
नहीं,
पूछना, बाकी कोई प्रश्न पूछने के लिए धैर्य नहीं, उनको ढाढ़स नहीं। अनंतर निर्दिष्ट यानी अभी अभी बताई हुई ये सब कृष्टियां कषाय के संबंध से 4 प्रकार की होकर, यानी क्रोध की भी कृष्टि बनी, मान की, माया की और लोभ की, सबकी बनी, तथा संग्रह कृष्टियों के भेद से 12 भागों में विभक्त होकर। इसका अर्थ क्या है, देखो अभी कृष्टि कितनी बनेगी, वर्गणा अनंत है, उसके अनंत विभाग वो भी यथायोग्य अनंत होगा, तो ये अनंत कृष्टियां बनी। अभी हम अकेले क्रोध की बात करते, तो क्रोध में भी बनी, मान में भी, माया की भी। अभी क्रोध में कैसी बनी, ग्रुप ऑफ कृष्टि जो होती है उनको कहेंगे संग्रह कृष्टि, संग्रह कृष्टि एक ग्रुप ऑफ कृष्टि। जैसे वर्गणाओं के समूह को हमने स्पर्धक कहा, अनेक कृष्टियों के समूह को वो स्पर्धक कहा था ना, यहाँ संग्रह कृष्टि का, ये संग्रह कृष्टि वहां लिखा ही है। यानी ये कैसे कहेंगे हम, क्रोध की एक संग्रह कृष्टि, दूसरी, तीसरी, इस तरह से उसको नाम देंगे। फिर उसके ये अधिक अनुभाग वाली है, फिर मान की, उसकी भी अपने 3 ग्रुप, माया की और लोभ की, जो ग्रुप है एक एक कृष्टियों का, क्योंकि ऊपर का ग्रुप है अधिक अनुभाग वाला है, उसके नीचे का ग्रुप और अनंत विभाग प्रमाण है, उसके नीचे और अनंत विभाग प्रमाण है, परंतु एक कृष्टि से दूसरे कृष्टि भी अनंत गुणा वाली है, परंतु यहां से ये अनंत गुणा, ये बहुत वास्ट अनंत है, बहुत बड़ा अनंत है, इसलिए उसके अलग ग्रुप बनाए। यदि उसी प्रोपोर्शन में अनंत का डिफरेंस होता तो कंटिन्यूअस में बताते, जैसे स्पर्धकों में देखा था, पहले स्पर्धक में वर्गणा मान लेते 100 से लेकर 120 तक की, फिर ऊपर गैप है, फिर 200 से 220 तक, ऐसे यहाँ कृष्टियों में भी होता है, ये नीचे के कृष्टि, फिर बीच में गैप, गैप किसका, अनुभव का, ये बड़ा अनंत है यहाँ पर, फिर यहाँ से अनंत गुना वाली कृष्टियां होंगी, फिर बहुत बड़ा अनंत का गैप, फिर अनंत गुना वाली, ऐसे तो ये संग्रह पुष्टि कहलाता है। ऐसे क्रोध में 3 ग्रुप बनेंगे, 3 संग्रह पुष्टियां, मान में 3, माया में 3 और लोभ में 3, इसको कहते हैं 12 संग्रह पुष्टियां।
हाँ, तो जो थर्ड ग्रुप है उससे माया, मान का अनंत गुणा
हीन
हुई,
क्योंकि हमने पहले भी देखा था ना, ऊपर भी यही पोजीशन में था, पूर्व स्पर्धकों का अनुभव घटते घटते ऐसा ही हुआ था। अब ये नीचे नीचे जो, क्योंकि उसमें अधिक अधिक पृष्ठिया बनेगी नीचे नीचे की ओर, अनुभाग और घटते चला जाएगा उसमें। अपूर्व स्पर्धक में भी ऐसा हमने देखा था ना, अपूर्व स्पर्धक बनते हैं क्रोध में कम बने, आगे आगे तो बहुत बने, तो उसका अनुभाग भी ज्यादा घट गया। अब यहाँ पृष्ठिया बहुत बनी ऐसा नहीं कहेंगे, अपने अपने प्रोपोर्शन में बनेगी। बरगणा का अनंतवा भाग तो सबके लिए वही होगा, परंतु अनुभाग की अपेक्षा वो और अनंत गुणाहीन बनेंगे। तो हमने क्या देखा, यहाँ पहले ही समय में कृष्टि तैयार होती है। तो कृष्टि तैयार होती है तो नंबर ऑफ कृष्टि कितनी होती है, एक वर्गणा में, सॉरी एक स्पर्धक में जितनी वर्गणाएं हैं, जिसको हमने चार कहा था, उसके अनंत विभाग प्रमाण एक समय में नंबर ऑफ कृष्टि बनती है। यहाँ वर्गणा के बदले कृष्टि नाम आ रहा है। वर्गणा में एक एक अविभाग प्रतिच्छेद का डिफरेंस था, यहाँ अनंत गुणा वाला डिफरेंस, इसलिए इसका नाम कृष्टि, कृष्टि यानी कृष्ण। आप जैसे फिर भी कृष्टि भी अनंत होती है, लेकिन वर्गणा का अनंतवा भाग भी वो अनंत कृष्टि होती है, एक एक संग्रह कृष्टि में फिर अनंत होगी। ये तीन तीन में डिवाइड है ना, हाँ नहीं नहीं तीन होती, संग्रह तीन होते हैं, तीन संग्रह कृष्टियां होती है, हाँ यानी एक ग्रुप ऑफ कृष्टियां हुई ना, अनंत कृष्टियों का एक ग्रुप हुआ, उसके नीचे ग्रुप दूसरा क्यों कहा, क्योंकि बीच वाला डिफरेंस वो वास्ट डिफरेंस एकदम अनंत गुणा वाला है, ये भी अनंत और ये भी अनंत है, ये अनंत है और ये भी अनंत है, परंतु ये बहुत बड़ा अनंत है। हाँ एक समय में बारह, हर एक में अपनी अपनी संग्रह कृष्टियां बनती है, क्रोध की तीन, मान की तीन, माया की तीन और लोक की तीन। आगे बढ़े, अनंत निर्दिष्ट ये सब कृष्टियां कषाय के संबंध से चार प्रकार की होकर क्रोध मान माया लोक की अपनी अपनी, तथा संग्रह कृष्टियों के भेद से, संग्रह कृष्टि बात समझ में आई ना, ग्रुप बारह भागों में विभक्त होकर उन संबंधी अवयव कृष्टियां, उन संबंधी अवयव कृष्टियां ने एक ये संग्रह कृष्टि हुई, ग्रुप ऑफ कृष्टियां, तो जिनके ग्रुप को संग्रह कृष्टि कही उन एक एक कृष्टि का नाम है अवयव कृष्टि, इनसे संग्रह कृष्टि बनी, इसलिए ये अवयव कृष्टियां गणना की अपेक्षा कितनी होती है ऐसा कहने पर प्रकृष्ट गणना की अपेक्षा एक स्पर्धक संबंधी वर्गणाओं के अनंत वे भाग प्रमाण होती है, इस प्रकार इस सूत्र द्वारा उनके प्रमाण का निर्देश किया गया है। ये बात ख्याल में आई, ये जो सूत्र में पढ़ा वही यहाँ फिर दोबारा बताए। वहां सूत्र में एक फद्दय वगणाओ ऐसा कहने पर अनुभाग संबंधी एक स्पर्धक के एक एक अविभाग प्रतिच्छेद के वृद्धि क्रम से निरंतर प्राप्त होने वाली तथा प्रत्येक अभव्यों से अनंत गुणे सदृश धन वाले परमाणु समूह से आरंभ की गई वर्गणाएं ग्रहण करनी चाहिए। यानी ये वर्गणाएं कितनी हैं? तो अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के नंबर ऑफ वर्गणा, और एक एक वर्गणा में परमाणु कितने हैं वो भी अनंत है, वो भी उतने ही समय संख्या में कहेंगे, यानी समान यहाँ लिखा है सदृश धन वाले परमाणु समूह। एक वर्गणा में क्या होता है, सदृश धन वाले परमाणु होते हैं, सदृश धन यानी उसकी जो अविभाग प्रतिच्छेद सबका समान है, तो ऐसे कितने हैं वहां वर्गों का प्रमाण, वो भी अभव्यों से अनंत गुणे, यानी अनंत वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। वर्ग यानी यहाँ कर्म परमाणु, अनंत कर्म परमाणुओं का समूह उसको यहाँ वर्गणा कहा और अनंत वर्गणाओं के समूह को यहाँ स्पर्धक कहा। ये कौन सी वर्गणा है? आहार वर्गणा, कर्मण वर्गणा। ये तो कर्म बने हैं, कर्मण वर्गणा कहाँ है? वर्गणा ये टर्मिनोलॉजी है। शरीर अलग, वर्गणा अलग। वर्गणा तो रॉ मटेरियल हुआ, वर्गणा शब्द तो अलग है। जिनमें समान अविभाग प्रतिच्छेद है ऐसे समूह को, परमाणुओं के समूह को वर्गणा कहते हैं। वर्गणा अलग होती है, स्कंद अलग होते हैं। यहाँ ये कर्म बने हैं ना ऑलरेडी,
रोटी में से बना है, अरे नोट से बना है, आटा है वो नोट में से बना है। तो नोट
आटा
तो उपचार से लोट को ही हम लोग बता सकते हैं ना कि आटा है वो लोट ही है।
नहीं नहीं, अभी आटा लोट तो ठीक है, उसमें कुछ नहीं हुआ है। अब मान लेते हैं आयन है और उसमें से हीमोग्लोबिन बना आपका, तो वो चेंज हुआ ना। कारमाण वर्गणा कर्मरूप परिणमित हो गई। अभी कारमाण वर्गणा कुछ फल नहीं दे रही थी, कर्म भी नहीं दे रहा था। जब उदय में आएगा तो अनुभाग का उदय होगा तो होगा, परंतु इसीलिए मैंने पूछा आपके। वर्गणा ये सामान्य शब्द है, वर्गणा और स्कंद। देखो जहां योग की बात आती है, आत्म प्रदेशों को भी वर्गणा कहा है, याद है कि नहीं? जिन जिन आत्म प्रदेशों में समान योग पाए जाते हैं, प्रत्येक प्रदेश में समान योग नहीं होता, जिनमें जिनमें समान योग है ऐसे ग्रुप ऑफ आत्म प्रदेश को हम वर्गणा कहेंगे। तो वर्गणा का अर्थ स्कंद नहीं होता, तो आत्म प्रदेशों के समूह को वर्गणा कहा है। हाँ, अभी ये जयधोला पढ़ रहे तो माइनोट पॉइंट भी आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो हम वर्गणा और स्कंद एक अर्थ में देखते थे, पुद्गल के बारे में हम जब विचार करते तो कितनी वर्गणा है, तो हम कहते तो है तो 23 वर्गणा, फिर भी जीव ग्रहण करता है 5 वर्गणा है, उसमें हम कहते आहार वर्गणा है, तेजस वर्गणा है, कारमाण वर्गणा वगैरह वगैरह, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा। तो मैंने पूछा था ये जो वर्गणा की बात चल रही है वो कौन सी वर्गणा है, तो आपने बताया कारमाण वर्गणा है। तो यहाँ कहते उस वर्गणा की बात नहीं है, वो कारमाण वर्गणा रॉ मटेरियल है, हाँ उसमें से कर्म बने हैं, परंतु यहाँ अनुभाग की रचना में जो हमने समान अभिभाग वाले परमाणुओं के समूह को यहाँ वर्गणा कहे, ये वर्गणा नॉट ने से वो स्कंद रूप से नहीं है, क्योंकि कोई परमाणु यहाँ पर है आत्म प्रदेशों में पूरा संघ और कोई कहाँ अन्य प्रदेशों में पड़े हैं, परंतु उनका अनुभाग समान है तो उसको हम एक लाइन में बताएंगे। ऐसे कोई वहां स्पर्धकों की और निषेकों की रचना तो नहीं होती है। ये आपको पेपर में आता है ना ग्राफ, ऊपर नीचे शेयर का भाव आता है ना, ऊपर नीचे सोने का चांदी का भाव, तो क्या होता है चांदी भी अपनी अप एंड डाउन होती है ना, बंगड़ी ऊपर चली जाती है, अभी भाव बढ़ गया हाँ। ग्राफ है उसका समझने के लिए, फिर भी उसी की भाषा में बोलेंगे ना हम, अपकर्षण हुआ, नीचे आए, ऊपर गए, कहेंगे तो ऐसा है कि बार बार पूरा वाक्य कौन बताएगा, ये तो ग्राफ है उसका। नहीं मैं बात अपूर्व स्पर्धकों में वर्गणा में डिफरेंस एक एक का है, किसमें? पूर्व में, उसमें भी ऐसा ही है, अपूर्व स्पर्धकों में भी ऐसा ही है। अपूर्व स्पर्धक जो बने थे ना, अनंत अपूर्व स्पर्धक यहाँ अपूर्व स्पर्धक बने थे, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, इतने सब बने थे। अपूर्व स्पर्धकों में पहले से दूसरे की आधी वर्गणा 2 गुने, तीसरे की 3 गुने, चौथे की 4 गुने, पांचवे की 5 गुने, ऐसा ही है वर्गणा में। वर्गणा में, हाँ वर्गणा का अविभाग प्रतिच्छेद में यहाँ से कहो या इसके अंत से, ये पूर्व स्पर्धक की आदि वर्गणा अनंत गुणी अविभाग प्रतिच्छेद वाली, तो वहां पर नीचे नहीं। प्रतिस्पर्धक तो आदि वर्गणा 2 गुणी, 3 गुणी, 4 गुणी ऐसे ही होती है। उसके नीचे आते हैं परंतु कंटिन्यूएशन वहाँ बीच में गैप नहीं है, वहाँ कंटिन्यूटी।
अपूर्व स्पर्धक से पहले समय में अपूर्व स्पर्धक बने, दूसरे समय में जो अपूर्व स्पर्धक बने वो
कंटिन्यूएशन। सभी जो बने ना अंतर्मूर्त, कल ये बात आई थी, सभी जो जितने बने हैं पहले आदि यानी जघन्य अपूर्व स्पर्धक की जघन्य आदि वर्गना जो है वहां से लेकर यहाँ तक दो गुना तीन गुना ऐसे अनंत गुना तक चले जाएंगे।
अच्छा, स्पर्धक और अपूर्व स्पर्धक और अपूर्व स्पर्धक के डिफरेंस क्या है?
बीच में अनुभाग की अपेक्षा, वर्गना की अपेक्षा प्रदेश देखेंगे तो एक पूरा गोपुच्छा होगा। वर्गनाओं की गोपुच्छा वैसे अभी कृष्टि भी बने, कृष्टियों में भी नीचे नीचे प्रदेश और बढ़ेंगे, तो कहते कृष्टि और पूर्व स्पर्धक अपूर्व स्पर्धक पूरी एक गोपुच्छा हो जाएगी। किसकी अपेक्षा? परमाणुओं की संख्या की अपेक्षा, अनुभाग की अपेक्षा। नीचे अनंत विभाग, अनंत विभाग, अनंत विभाग, ऐसी कृष्टियां बन रही है। ये संदृष्टि ये फिगर ऐसा ड्राइंग नहीं बनाएंगे तो कुछ नहीं समझ में आता, ये क्या संग्रह क्या हुए ऐसे बात ऐसे रखते हैं ना।
हाँ,
टेप के ऊपर एकने वाले सुनने वालों को अभी क्या है वालों को आप बीच में मराठी बोलते थे, हम भी मराठी में नहीं, ये संदृष्टि इसलिए याद है, अभी तो संदृष्टि संदृष्टि चल रही है ना, वही घूम रहे हैं। हाँ, सपना सर की संदृष्टि का चल रहा है ना हमारा। तो देखो ये क्या है, बारह संग्रह कृष्टियां बनी, तो उनकी जो अवयव कृष्टियां गणनाने की अपेक्षा कितनी, नहीं हम नीचे का पढ़ रहे थे, वो तो अनंत विभाग प्रमाण बनी। सूत्र में एक फदे वगण ऐसा कहने पर अनुभाग संबंधी एक स्पर्धक के, एक स्पर्धक में क्या होता है, एक एक अविभाग प्रतिच्छेद के वृद्धि क्रम से निरंतर प्राप्त होने वाले। एक स्पर्धक में हमने मान लिया था, जैसे पूर्व स्पर्धक में हमने समझाया था, नीचे की वर्गणा में अविभाग प्रतिच्छेद प्रति परमाणु सौ मान लेते हैं, तो दूसरी वर्गणा में कितना होगा, 101 होगा, तीसरी में 102 होगा, चौथी अविभाग प्रतिच्छेद एक एक से बढ़ते हैं। मान लेते हैं 100 से लेकर 120 तक के एक एक से बढ़ते हुए यहाँ वर्गणाएं, फिर दूसरा स्पर्धक 200 से चालू हो जाएगा, इसमें बीच में कोई वर्गणाएं नहीं है, तो इनके ग्रुप को क्या कहा हमने, स्पर्धक। ये बात ख्याल में आई? तो एक 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 स्पर्धक के एक एक अविभाग प्रतिच्छेद के वृद्धि क्रम से निरंतर प्राप्त हुई, इन्हें 100 101 102 इसके बीच में कोई गैप नहीं है, 100 से लेकर 120 तक निरंतर है एक एक के वृद्धि से, ऐसा नहीं कभी 10 की वृद्धि होती कभी 20, ऐसा कुछ नहीं है, निरंतर प्राप्त होने वाली। तथा प्रत्येक, ये जो प्रत्येक वर्गणा है वो कैसी है, प्रत्येक अभोग्यों से अनंत गुणे सदृश धन वाले परमाणु समूह से आरंभ की गई वर्गणाएं। वर्गणाओं में प्रदेश समूह कितने, वो भी अभोग्यों से अनंत गुणे। देखो वर्गणाएं कितनी अनंत होती कितना इमेजिन कर सकते, यहां निषेकों की बात नहीं हो रही है वर्गणाओं की, क्योंकि हमने लोअर मोस्ट वर्गणा लेते हैं उसमें मैक्सिमम प्रदेश है, और एक एक स्पर्धक में अनंत वर्गणा, ऐसे स्पर्धक एक गुणहानि में अनंत, और ऐसे गुणहानि उससे भी अनंत गुणे, यानी टोटल नंबर ऑफ स्पर्धकों में टोटल नंबर ऑफ वर्गणाएं कितनी होगी इसको इमेजिन करो। फिर भी वर्गणा जो अनंत स्पर्धक जाकर वो गुणहानि होती है, यानी वर्गणाओं के प्रदेश आधे होते हैं, और उसको डेढ़ गुणा करो, वो अनंत को डेढ़ गुणा करो, क्योंकि गुणहानि किसको कहते हैं, नंबर ऑफ स्पर्धक को भी नहीं कहते, नंबर ऑफ वर्गणाओं को कहते हैं। यदि हमें वर्गणा के प्रमाण से सत्ता के परमाणु निकालने हैं तो नीचे की सबसे नीचे की जो वर्गणा है ना, देखो एक एक स्पर्धक में अनंत वर्गणा, ऐसे अनंत स्पर्धकों की एक गुणहानि, यानी एक गुणहानि में हम क्या देखेंगे, मात्र वर्गणा वर्गणाओं को एक एक उपेक निकलेंगे ऐसा रखेंगे तो यहां जितने थे उससे आधे हो जाते, एक गुणहानि। और ऐसी कितनी गुनहानी अनंत है। तो टोटल वर्गणाओं को हम ऐसा लिखेंगे, केवल वर्गणाओं को। तो ये पहली वर्गणा को डेढ़ गुणहानी से गुणा करेंगे तो सत्ता के संपूर्ण परमाणुओं का प्रमाण आएगा। ये सत्ता के परमाणु निकालने का
था। कि उन लोग कभी डेढ़ गुणहानी से गुणा करेंगे तो जो समूह है, जो संख्या है वो एक स्पर्धक में कितने हुआएगी कि पूरी
सत्ता में कितने हुआएगी, सत्ता के परमाणुओं की संख्या आएगी। वर्गणा मल्टीप्लाइड बाय अनुभाग संबंधी डेढ़ गुणहानि इज इक्वल टू सत्ता के कर्म, सत्ता के कर्म पूरा
सत्ता
बिल्कुल। डेढ़ गुणहानि कितनी अनंत है। गुणहानि में केवल स्पर्धक नहीं लेना, स्पर्धक की वर्गणा लेना।
स्पर्धक की अपेक्षा हम लोग जो गुणहानि देखते हैं,
अपन स्पर्धक की अपेक्षा देखते हैं, स्पर्धकों में वर्गणा ही तो है ना।
नहीं, मेरा क्वेश्चन क्या था कि वर्गणा की अपेक्षा कभी डेढ़ गुणहानि से गुणा करेंगे और स्पर्धक की अपेक्षा हम लोग कभी डेढ़ गुणहानि से गुणा करेंगे, वहाँ पे भी हम लोग जो देखते हैं कि
वो स्पर्धक कहने की पद्धत है, परंतु यहाँ प्रति वर्गणा की बात चल रही है ना। कितने स्पर्धक जाके गुणहानि होती है बताने के लिए हम स्पर्धक का नाम लेते हैं। हमने क्या देखा था, हमने क्या माना था, एक गुणहानि में स्पर्धक मान लो 9 और एक स्पर्धक में वर्गणा मान लो 4, तो एक गुणहानि में वर्गणा कितनी होगी, 9 × 4 36। मैं क्या पूछ रही हूँ, एक गुणहानि में वर्गणा कितनी है, 9 × 4, इसको एक गुणहानि कहेंगे। अभी इसको 3/5 करो, अभी इसको 9 × 4 कहने की पद्धति नहीं है क्योंकि हमेशा संदृष्टि बनाई 8 की, पर उसके अर्थ कितना है, एक गुणहानि में इतने हैं वर्गणा तो उस डेढ़ गुणहानि में इतनी वर्गणाएं होगी, वर्गणाएं टोटल, उसको डेढ़ गुणहानि कहा। और उस संख्या से इनके परमाणु के प्रमाण को गुणा करने पर सत्ता के टोटल परमाणु आएंगे। तो कितने कर्म सत्ता में होगी इमेजिन कर सकते हैं। अभी निषेक कितना बड़ा होगा, वर्गणा इतनी बड़ी है तो, क्योंकि निषेक में तो क्या होता है, निषेक यानी स्थिति को बताने वाले, स्थिति भी कैसी है ये निषेक कहलाएगा और ये दूसरा निषेक तीसरा निषेक सत्ता का, यहाँ जाके आधा होगा तो ये गुणहानि, ऐसी यहाँ गुणहानि कितनी होती है तो असंख्यात होती है, और एक गुणहानि भी कितनी होती है तो पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण होती है। तो यहाँ इसको डेढ़ गुणहानि से गुणा करेंगे तो टोटल आएंगे और इसको डेढ़ गुणहानि से गुणा करेंगे तो भी टोटल आएंगे, तो इसकी गुणहानि तो अनंत में है और ये तो असंख्यात में है, तो ये निषेक कितना बड़ा होना चाहिए मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि इसको असंख्यात से गुणा करने पर टोटल अनंत आ रहा है और इसके अनंत को गुणा करने पर टोटल अनंत आ रहा है, तो ये निषेकों में परमाणु कितने अधिक अनंत होने चाहिए, ये बात। हाँ? ना ना ना, यहाँ गुणकार है वो पल्ले के असंख्यात विभाग का है और यहाँ गुणकार है वो तो अनंत गुणाकार है। नहीं समझते, यहाँ 200 को हम यहाँ 10 गुना करेंगे, डेढ़ के चलो 12 ही ले दे ना गुनहानि, निषेक किए हैं तो 2400 करने। अब यहाँ तो बहुत कम होगी, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ 8 ही होगी एक परमाणु, तो उसकी गुनहानि भी लंबी होगी और उसकी डेढ़ गुनहानि से उसको गुणा करना है और हमें 2400 आना चाहिए।
300
गुणा, हाँ, इस हिसाब से लेना है उसको, दोनों का उत्तर सेम आना चाहिए गुण का।
पर सभी जगह वो तो अव्यव से अनंत गुणा
कथन तो वही हो, ऐसा ही कथन,
इसीलिए ये थोड़ा सोचता भी कठिन पड़ता है कि इतना किससे
यानी इतने स्पर्धकों का और वर्गणाओं का वेरिएशन है, एक एक अविभाग प्रतिच्छेद से बढ़ते हुए है वो वर्गणाएं हैं और वो कितनी अनंत है उसकी बात यहाँ हो रही है। अब ये भूल जाओ सब। यहाँ क्या कहना चाहते थे, फिर हम आते हैं। अब क्या बनेंगे, संग्रह पृष्ठिया बनेंगे। संग्रह पृष्ठि किसको कहेंगे, ग्रुप ऑफ पृष्ठियों, उस ग्रुप में जो एक एक पृष्ठि उसका नाम है अवयव पृष्ठ। ऐसे क्रोध में तीन संग्रह पृष्ठि, मान में तीन, माया में तीन, लोभ में तीन बने। ये तीन बनिए ने उसके जो पूर्व अपूर्व स्पर्धक थे उसके भी नीचे अनंत वे भाग प्रमाण अनुभाग हो जाता है। तो ये परमाणु कहाँ से आए, जो पूर्व और अपूर्व स्पर्धक में थे उसी में से नीचे आए और ये पृष्ठियां बनी। यहां तक तो हमने देखा, इसी को बादर पृष्ठि कहेंगे। जब आगे सूक्ष्म बनेगी इसी में से तब इसको हम बादर बादर कहेंगे, अभी तक तो पृष्ठि कहेंगे। यहाँ पर संग्रह पृष्ठि बनी, पृष्ठि बनी, इसके आगे जब इससे भी सूक्ष्म वाली बनेगी, क्योंकि ये तो पहले समय की पृष्ठि, इसमें भी पूर्व पृष्ठि अपूर्व पृष्ठि कहते चले जाएंगे। और फिर जब ये सब पूरा हो जाएगा तब जाके इसमें से सूक्ष्म पृष्ठि बनेगी। और अब इसको केवल पृष्ठि पृष्ठि कह रहे हैं, पर समझना ये बादर पृष्ठि है, क्योंकि आगे जाके सूक्ष्म पृष्ठि बनने वाली है। पृष्ठि में भी पूर्व पृष्ठि अपूर्व पृष्ठि कहेंगे, क्यों, पहले समय में बनी उसके नीचे दूसरे समय में बनी, तो पहले वाले को हम पूर्व कहेंगे, फिर तीसरे समय में और बनी, चौथे समय में और बनी, तो पहले पुरानी हो गई ना पृष्ठि। नए नए समयों में बनेगी वो, नीचे नीचे बनेगी और हीन अनुभव वाली बनेगी। यानी अभी देखो सत्ता में पड़ा हुआ अनुभव कैसा घट रहा है, कौन से कर्मों का, ये पृष्ठि तो मोहिनी में होती है और बाकी कर्मों में अनुभव कांडक आगे तो चल ही रहा है, उसका भी अनुभव का सत्कर्म तो घट ही रहा है। हाँ, उनकी लोअर लिमिट वही है, पूर्व स्पर्धक की जो जघन्य वाली वो उतनी रहेगी। सबके समान होती है, आयु को छोड़कर बाकी सब समान, सब समान हो जाते हैं। यानी ज्ञानावरण आदि की भी घट रही है ना,
लोअर लिमिट लता वाली जो है
के वही अनावरण में लोअर लिमिट कौन सी होगी। यानी वो सर्वघाती की लोअर लिमिट सर्वघाती की अपनी होगी, और जो मति ज्ञानावरण आदि है, हमने देखा ना देशघातीकरण उनमें हुआ था, तो वो एक सानी वगैरह जो हुए थे उसमें लता में अभी घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है।
और इतने अनुभव के साथ हम लोग संसार में घूमते हैं और हम लोग मजा कर रहे
हैं। इतने अनुभव के धारक और कितने परमाणु हो गए, वहां तो इतने खिर जाते फिर भी कितने हैं, इसका यहाँ दिखते रहे बापरे कितने हैं, हमें तो पता ही नहीं ना हम क्या करें। ये मोहिनी इतना घट गया फिर भी उसमें ये स्वरूप है, और अभी तो अपर लिमिट देखो कहाँ किसकी कितनी बढ़ती है। ये वाक्य पूरा करके फिर रुकेंगे। वहां सूत्र में एक फद्द वगणा ऐसा कहने पर अनुभाग संबंधी एक स्पर्धक के एक एक अविभाग प्रतिच्छेद के वृद्धि क्रम से निरंतर प्राप्त होने वाली तथा प्रत्येक यानी प्रत्येक वर्गणा अभव्यों से अनंत गुणे सदृश धन वाले परमाणु समूह से आरंभ की गई वर्गणाएं ग्रहण करनी चाहिए। पुनः ये एक प्रदेश गुणहानी स्थानांतर प्रमाण स्पर्धक शलाकाओं से अनंत गुणी हीन चाहिए। आगे क्या ऊपर क्या लिखा है पहले देखो, कौन सा दसवां पॉइंट है, एकाणुगुणप्रदेश अविभाग प्रतिच्छेदोत्तरकमेण निरन्तरमुवलम्बमाणो पादेकमभवसिद्धिहिन्तो अनन्तगुणेमित्त सरीसधनीय परमाणु समूह समूहाद्धावो गेतव्वावो एदावो पुनः एय पदेशगुणानि ठाणन्तरफद्दय शलाकाहिन्तो अनन्तगुणावो। नहीं नहीं बरोबर है, क्योंकि वर्गणाओं से अनंत गुणे ही नहीं। क्या कहना चाहते हैं, ये क्या लिखा, एक गुणहानी स्थानांतर प्रमाण स्पर्धक शलाकाओं से अनंत गुणी है। एक गुणहानी में स्पर्धक कितने देखे हमने? 9 और एक स्पर्धक में वर्गणा 4 9 से 4 अनंत गुणा है। और अभी क्या बनी है? कृष्टि बनी है। ये जो कृष्टि बनी है वो 9 से अनंत गुणी बनी और 4 से अनंत गुणाहीन बनी। 4 के अनंत वे भाग बनी है ना, वो 9 से अनंत गुणी है। ये आपके प्रश्न का भी उत्तर आएगा। एक गुणहानि में जितने स्पर्धक है उससे कृष्टि अनंत गुणी बनी, परंतु एक स्पर्धक में जितनी वर्गणा है उसके अनंत वे भाग प्रमाण बने। 9 और 4 के बीच वाला अनंत ही है। ये कल इसकी चर्चा करेंगे। और
अभी डालना
नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसा बराबर है। यानी 9 से अनंत गुणी कृष्टि बनी और 4 के अनंत वे भाग प्रमाण कृष्टि बनी। जावाणी